परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
तो कुछ देर के बाद आत्मा में वो ज्ञान आकर हिलोर उठती है, प्रेरणा आती है, लहर उठती है, कह रहे परमात्मा से तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारे सारे काम ठीक करेगा, और आप वहां बैठे हो, आपकी भैंस मरगी बैठे बैठे, बता आपने के बचा लिया, 50,000 की भैंस मरगी, बता आपने के सारा कर लिया यहां ना आकर के। कहने का भाव ये है कि पैसे भी बर्बाद, भैंस भी गई, और वहीं बैठे बैठे नुकसान हो गया। और परमात्मा के चरणों में आवेंगे, कहते हैं संत शरण में आने से आई टड़बला, अर्जय मस्तिक में सूढ़ी होगा कांटे में टल जा। ये विधान है प्रभु का। अब आदमी बीमार हो जाता है, काम भी छूट गया, पड़ा रहा उसमें हॉस्पिटल में, 15 दिन में छुट्टी मिली, 50,000 रुपये लगे। और पुण्यात्माओं, आप जहां से कदम रखते हो ना इस भगवान के दरबार के लिए, वहीं से आपके पुण्य शुरू हो जाते हैं। जो आपका किराया आने जाने में लगता है, ये पुण्य में लगता है आपका, ये भी पुण्य में काउंट होता है, ये आपका धर्म में गिना जाता है। तो ये सभी मिलकर आपको बहुत ही लाभ देता है। पुण्यात्माओं, अब संसार के व्यक्ति जो भगवान से अपरिचित हैं, वो आपके बारे में ना जाने के के विचार रखते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई हम तो 6 महीना में जाकर एक माता दोकड़ है, और ये 3रे दिन सत्संग में चले जाते हैं, 10वें दिन भाग लेते हैं, इनका दिमाग खराब हो रहा है, ये तो बौड़ी बूझ है, ये तो काम जो है ना अपना नाश करेंगे, पैसा बर्बाद करते हैं, देख लीजिए थोड़े दिन में कंगाल हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चिड़ी चौंच भर लेगी नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नीनो कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपने सिग्नेचर कर रहे हैं कि दान तो धन नहीं घटेगा, लेकिन कुपात्र को दिया हुआ दान लाभ नहीं देता, सुपात्र यानी ठीक ठिकाने। अब बंजड़ खेत में गेहूं बोनता है, गेहूं नहीं उपलब्ध होगा, अपनी अच्छी संवारी हुई डहर के अंदर, डहर खेत में बीज बोगे, वो जमीन अपना धन रखेगी नहीं, कई गुना करके देती है। अब जैसे किसान 1 एकड़ जमीन में और 40 किलो गेहूं डालता है, एक बार तो वो ऐसा लगता है जैसे गेहूं बर्बाद कर दिए, माटी में गिर दिए, और फिर वो 60-70 मन लाता है 40 किलो के, यानी 1 मन के 80 मन गेहूं वो लेकर आता है 1 एकड़ में। अब पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बात है कि जो इस प्रोसीजर से परिचित नहीं है परमात्मा के मार्ग तक, उनको तो हम ऐसे लगे हैं जैसे ये बर्बाद कर रहे हैं धन को। एक समय एक किसान गेहूं बोया था, और एक बड़े शहर का रहने वाला कोई बाबूजी, कोई अच्छा कर्मचारी, जिसकी पहली बार गांव में ड्यूटी लगी थी, शहर से वो गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति गेहूं को और मिट्टी में डाल रहा है। उस शहर के बाबूजी को तो वो गेहूं अपने घर में लोहे की टैंकी में देखे थे डले गले हुए सुरक्षित, और उसके विषय में पता था कि ये खराब हो जाएंगे, पानी लग जाए तो खराब हो जाएंगे, उसमें और भी दवाई डाली जाती है ताकि वो ठीक रहे, खराब ना हो जाएं। और वो इतने अच्छे खाने की वस्तु है, जीवन दाता है गेहूं। तो उसने बाबूजी ने देखा कि एक किसान गेहूं एक थैले में भर रखे हैं और बैलों के पीछे एक यंत्र जोड़ रखा है हल, उसके अंदर एक पाइप सी ला रखी होती है जिसको ओरना बोल रहे हैं, बीज बोने की एक पाइप होती है बीज छोड़ने की, तो उसमें डाल डालकर खेत की मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है। अब उस शहर के व्यक्ति ने सोचा भाई यू आदमी मेंटल तो नहीं है, इतनी अच्छे खाने की चीज को और मिट्टी में गिरने लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। वो खड़ा होकर कहने लगा भाई रुकना, भाई रुकना भगत, भाई क्या कर रहा तू ये, अरे इतनी अच्छी गेहूं कनक, देश में पहले ही खाद्य पदार्थों की कमी है, अन्न की कमी है, तू मिट्टी में मिला रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या, क्यों बर्बाद कर रहा है इस इतने अच्छे गेहूं को। अब उस किसान ने सोचा यू बंदर कित्ता आ गया, यू मुझे शिक्षा दे रहा है। तो किसान बोला बाबूजी मैं मिट्टी में गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, मिट्टी में डालकर आबाद कर रहा हूं, ये बर्बाद नहीं हो रहा, ये मुझे आबाद करेगा। अब बाबूजी ने सोचा भाई यू अच्छा ये कैसे आबाद करेगा तुझे, तू तो खराब कर रहा है, ये तो खराब हो जाएगी। हमारे घर में ना लोहे की टैंकी में रख दे हम, और उसमें भी इसमें कीड़े लग जाते हैं, आप मिट्टी में डालकर कहते हो आबाद करेगा। तो किसान ने उसको पूरी तरह समझाया कि ऐसा है श्रीमान जी कि मैं एक मण 40 किलो गेहूं लाया हूं और इस एक एकड़ में डालूंगा, और फिर भूसा तो न्यारा होगा, जो धन मुझे मिलेगा पशुओं के लिए भूस जो बनेगा वो तो अलग होगा, और 80 मन गेहूं ले जाऊंगा, इसमें से 80 मन गेहूं मिलेंगे मेरे को। अब ये उसके गला उतरे नहीं, क्योंकि बाबू जी ने कदे प्रोसीजर देखा नहीं। वो कहने लगा मैं तेरी बात को मानू नहीं, ये तो मिट्टी में बर्बाद हो जाएगा, तो कति खत्म हो जाएगा, देख लेना तीसरे दिन। अब कुछ दिनों के बाद किसान ने कहा कि तू, कुछ देर के बाद उनकी डिस्कस चलती रही, फिर कहा तू 4 महीने पाछा आइए, फिर दिखाऊंगा जादूगरी तेरे को। अब उस किसान, उस शहर वाला व्यक्ति का फिर मौका लग गया, जब गेहूं पकी हुई थी और ऊपर बाली में गेहूं परिपक्व हो चुके थे, उसको किसान ने फिर दिखाया कि देख भगत जी, ए श्रीमान, एक दाने का, एक बीज का ये गुच्छा बन गया, इसमें सैकड़ों पौधे, 10-20 पौधे उग गए, और प्रत्येक में बाली, एक बाली में 20-25 ये गेहूं है। उसने ऐसे ऐसे करके वो दिखा, देख। तब उस शहरी व्यक्ति की आंखें खुली और उसको सत्य माना। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप धन दान कर रहे हो, किराए में पैसा लगा रहे हो, उन व्यक्तियों को और अनजान व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे ये तो मिट्टी में बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया, खत्म कर दिया, खो दिया, नहीं, ये बर्बाद नहीं हो रहा, आपको एक दिन आबाद करेगा, ये परमात्मा का विधान है। अब अनजान व्यक्ति ने तो ऐसा लगता है तुम नाश करने लग रहे हो, आपको पता है कि हम तो, वो प्रोसीजर मिल गया हमारे को जो हमें आबाद करेगा। कुछ दिनों के बाद आप देखना आपके घरों में सबसे न्यारे आपके घर होंगे, आपके बच्चे सबसे न्यारे होंगे, इतने निर्विकार होंगे, दुनिया ये सोचा करेगी कि अपने बच्चा के ब्याह करा तो रामपाल वाले चेलियां के करांगे चेलियां के, नहीं तो अपनी बेटी ना अपनी ब्याह चल है ना, उससे पहले दिल नो करने लग जाना मेरा किसा टकरा होगा, कोई शराबी है बटेऊ मिल गया, छोरी भी दुखी माँ बाप भी दुखी। और हमारे घर में ये सैकड़ों सौ सौ कोष नहीं रहेगी ये बुराई बीड़ी शराब मस्तमाखू की, और दुखी नहीं कर सकते एक दूसरे को, परमात्मा से डर लगेगा, थोड़ी सी भी कवासनी होगी तो तीन बार माफी मांगेंगे एक दूसरे से, इतनी दया भर जाएगी। क्योंकि हम नास्तिक बन गए, भगवान से डर रहा नहीं, उसके संविधान से परिचित रहे नहीं, हम बर्बाद होते जा रहे हैं, एक दूसरे को चैन नहीं जरा सी भी, बेटी बहन तो पहला चिंता होने से भगवान क्यों करोगा, और छह महीने के बाद तलाक के कागज तैयार हो जाते हैं। ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है, क्यों हमारे अंदर दया रही नहीं, भगवान का डर रहा नहीं और परमात्मा का सहयोग रहा नहीं। अब क्या बताते हैं, अकल अलोने दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। अब संसार को जैसे कहते हैं अकल अलूने दीखते, अकल अलूने उन्ने कहा ग्रंथ कति बोड़ी बूच मूर्ख से दिखा। अब संसार जो भगवान से अपरिचित है, इस मार्ग में नहीं लगा है, उनको तो हम अकल अलूने दिखे कति मूर्ख नजर आते हैं, लेकिन ये सर्व अकल के मूल, ये इन्होंने सब अकल माने ज्ञान, ये आप तो सब ज्ञानों की जड़ ग्रहण कर रहे हो, चाहे किसी ने आप अकल अलूने दिखते हो, क्योंकि आप दिन रात मालिक याद करो और शुभ काम में आपकी नियत होगी। अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे भगवान को ये झूलने अनहद झूल। इस प्रकार हमने अपने मालिक के विधान को मद्देनजर रख करके संसार की बातों में नहीं आना, वो तो अनजान है। एक पहले हम गांव गांव में जाकर पाठ किया करते थे, तो प्रारंभ में कुछ ये 2,500 रुपये लगते थे उस पाठ के करने में, हम अपना किराया नहीं लेते थे जो पाठ करने जाते थे, कोई पैसा कोई नहीं लेता था, क्यों तकरीबन मेरे साथ जो भक्त दास भी सर्विस करता था और भी सर्विस वाले भक्त थे वो साथ सहयोग दिया करते थे, छुट्टी ले लेते सैटरडे संडे ना हम पाठ कराया करते। तो फिर वो क्या सिर्फ खाना भंडारा और जो पाठ की सामग्री आदि आती उसमें 2,500 रुपये लग जाते थे। जिसके हम पाठ कर रहे थे उसकी बहन का पति आ गया, बहन हुई, और उसका दूसरा भाई उपदेश नीले रखा था और वो शराबी था, वो मेहमान रिश्तेदार रिलेटिव जो था शराब पिया करता, तो वहां पाठ चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उसको आते ही कह दिया कि फूफा जी आज हमारे घर में मत आइए, तू शराब पी रखी और बीड़ी पीता है। वो कहने लगा अच्छा भाई तेरी वहीं रोटी ले आऊंगी। वो दूसरे घर पहुंच गया तो दूसरे दोस्त का साला था दूसरा, वहां रुक गया। अब उन्होंने तो उसको पट्टी पढ़ा दी, वो तो नाश करेंगे, ऊपर चौबारे बना रखे हैं, उनका किवाड़ ना चढ़वाए गए, किवाड़ ना चढ़वाए 2,500 रुपये ला दिए, यो खगड़ा रहे न खुआन लाग रहा, 2,500 रुपया नाश कर दिया। अब वो सुबह जब हम तो चले गए पाठ कूट करके, बीच आला दिन आया था सामने, हम सुबह भोग लगाकर आगे पीछे बतावे थे, वह बोले जी वो इब के कर ले संसार का, अब वो हमारा जो मेहमान खुद तो दारू पीव और बीड़ी पीव है, कति बर्बाद हुआ पड़े, मन ने शिक्षा दिया के नो कहे तने कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए, नाश कर दिया 2,500 रुपये ला दिए खुआ दिए यार लोग आते यहां पर। अब बताओ उसने मैं के समझाऊ, आप दारू पीवे सारी बकवाद करे, मैं पुन का काम करूं मुझे बिसरावे। फिर उसको बताया भाई कुआड़ भी चढ़ देंगे, धर्म का काम के रोज होया करे, ये कुआड़ तो दो दिन पीछे चढ़ जाएंगे। अब वो बताता था कि मेरी पत्नी इतनी बीमार रहा करती, हमने सारे दिखा ली थी और घर में बरकत नहीं, आए वर्ष एक भैंस मर जा, मुश्किल तो पाल पोस कर तैयार करा, वह भैंस की मृत्यु हो जाए, वो सारा बर्बाद हुआ था, गेली की नाश होया पड़ा था। अब वो उसकी पत्नी भी ठीक होगी, घर में बरकत होने लगी, बताओ पाठ क्यों ना करा होगा वो, और ये धर्म के काम तो वो भी इच्छा होती है अच्छी आत्मा की, तो धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोक, खैर आयत में खैर है कि जय आत्म पोख। तो इस प्रकार आपको अन्य व्यक्ति जो भक्ति से दूर हैं वो कुछ भी कहें उनकी आप नहीं मान सकते, यदि आपको पूर्ण ज्ञान हो गया तो पूर्ण ज्ञान कराने के लिए आपको यहां बुलाया जाता है, नहीं तो भक्ति आप घर पर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप कच्चे हो और इतने धनी नहीं हुए हो जितना ये दास बनाना चाहता है। आपको ज्ञान भी संपूर्ण नहीं है, बेसिक संपूर्ण ज्ञान हो भी जाए फिर भी कोई न कोई काल की अटकल आपका अड़ी रहेगी, और यहां आने से और कई पुण्य प्राप्त होते हैं, जैसे कई प्रकार के पाप होते हैं आपके, कुछ पाप तो ऐसे हैं जो पुण्य से समाप्त होते हैं, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो संत जी के दर्शन, साधु के दर्शन से नष्ट होते हैं। कबीरा दर्शन संत का साहेब आवे याद, लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय बाद। तो संत जी के दर्शन करने से ही कुछ पाप हमारे ऐसे ही कटते, और तरीका नहीं उसका उनका, और कुछ ऐसे हैं आशीर्वाद से समाप्त होते हैं, और कुछ पाप ऐसे हैं जो मंत्र के जाप से ही नष्ट होते हैं। तो हमने जैसे ये कपड़ा मैला हो गया हमारा, कमीज ये कुर्ता, अब कुछ तो ऐसे मैल हैं पानी में डालते हैं मिट्टी उतर जाएगी, कुछ ऐसा मैल है कि ये कॉलर का लग जाता है साबुन से और से ही उतरता है, कुछ ऐसा मैल है कि ड्राई क्लीन से ही उतरेगा। तो सभी क्रिया अपना के हमने उस कपड़े को स्वच्छ करना है, तो अपने अंतःकरण को हमने सभी तरीकों से निर्मल करना है ताकि ये भगवान के योग्य हो जाए, ये कमीज पहनने योग्य रहे। इसलिए आपको यहां बुलाया जाता है, और पांच प्रकार की यज्ञ यहां पर होती है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान की चल रही है। यहां पर एक यज्ञ है धर्म की, या धर्म भंडारा चलता है, आप किसी भी समय आते हो, रात्रि में, दिन में, दोपहर में, ये सदा व्रत कबीर भगवान का आपको चलता मिलेगा। इस चार द्वारी के अंदर आने के बाद आपको केवल सिमरन सिमरन की चिंता रह जाती है और किसी चीज की नहीं। ये धर्म भंडारा उन पुण्यात्माओं के सहयोग से चलता है, फिर उनको भगवान कितना लाभ देगा। परमात्मा कहते भूखे भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे परवान। आप जी यहां कोई रोटी खाने नहीं आते, खाना खाने नहीं आते, आप भगवान के लिए आते हो। जैसे हम पहले जाते थे, साला सर जाता था ये दास हनुमान की पूजा करने, हनुमान जी की, और वहां एक किसी बूंदी सी मूर्ति, उसकी शकल भी अच्छी को ना, ऐसे ऐसे हो रहे थे हम वर्मित, और इतनी श्रद्धा थी उसमें, और वहां क्या करते थे, होटलों पर अपनी अपने पल्लित खाना खाया करते, श्रद्धानियों की नहीं थी भगवान मिल जाए। लेकिन वो तरीका भगवान मिलने का नहीं था। तो आप यहां खाना खाने नहीं आते, आप तो भगवान के लिए आते हो, और फिर आपको यह सुविधा मिल जाए तो आत्मा और खुशी होती, आशीष देती है, अपने आप आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो वो जो हिलोर उठती है वो पुण्य परमात्मा के उन बच्चों को मिलता है जिनका यहां सहयोग से भंडारा चल रहा है। और ये सभी दान, जैसे पंखे लगे हैं, ट्यूब जग रही है, मैट बिछा रखे, सेट बनाया, ये सारा धर्म और पुण्य ही, ये सब पैसा पुण्य से ही बना हुआ होता है, और जिनका इसमें सहयोग है उनको परमात्मा सीने से लगाएगा और उनको इतना देगा गिनती नहीं होगी। एक यज्ञ है धर्म की, ये धर्म भंडारा चल रहा है। दूसरी यज्ञ है ध्यान, यहां आने के बाद आपको परमात्मा याद रहता, चर्चा चलती है तो मालिक की चलती है, एक दूसरे से डिस्कस करते हो, जो पुराने भक्त हैं वो नयों को समझाते हैं, वो भी आपको एक ध्यान यज्ञ होती है, और साथ में या ज्ञान यज्ञ भी होती है। अब ज्ञान यज्ञ के साथ ध्यान का जोड़ है, क्योंकि जो परमात्मा की चर्चा चलेगी उसके अंदर ध्यान भी रहेगा। तो ऐसे एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, जहां पर ध्यान ऐसे नहीं जैसे अठ योग कर साधना लगाओ ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम, वो के ध्यान होया, तुम ज्ञान ही पूरा नहीं है उन लोगों का जो ऐसी साधना बताते हैं, उनका ज्ञान ही झूठा है। तो परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहां लाओ, ये बाद विद्या चतुराई, तुम्हारा ज्ञान ही यूजलेस है, तुम्हारी सिद्धांत ही गलत है, तुम ध्यान कहां लगाए बैठे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, वाद विवाद करके चतुरता दिखा रहे हो। हमारा ध्यान है जैसे जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर मैं सुरत प्रीतम ऐसे ध्यान लगावे। अब जैसे बेटी का ब्याह हो गया, जब वो ससुराल से अपने घर आती है तो रहती घर पर है, सारा काम करती है और ऊपर से कति कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन उसकी उसका ध्यान अपने पति के पास रहता है। कहते हैं इसको ध्यान कह, हमारा ऐसा ध्यान है तो वो ध्यान है। यह हठ योग वाला ध्यान संतों ने नहीं बताया। कबीर परमात्मा कहते हैं मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो आंख ना मुंदे कान ना रुंदे ना अन्ह दुल जावे, जो सहज समाध बतावे। सहज ध्यान, समाध माने ध्यान, ये सहज समाधि है। तो यहां पांच यज्ञ चलते हैं। तीसरी यज्ञ हवन की, यहां पर ये अखंड ज्योत चलेगी तीन दिन तक। एक जो पाठ कराता है उसमें लगभग 1 किलो देसी घी 3 दिन में हवन हो जाता है एक व्यक्ति का, और जो भी कराता है उसका 3 दिन के अंदर उतना ही अलग अलग से ज्योति जला करके उतना घी हवन होता है। ये हवन की यज्ञ है। और चौथी योग प्रणाम, या प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी एक यज्ञ का काम करती है। लेकिन सच्चे सच्ची श्रद्धा से, हृदय से, इन्हों देखा देखी की भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। लेकिन एक दो बार शुरू माता जब तक देखा देखी करे, सारे करें तो मैं भी कर लूं, लेकिन उसका विशेष फिर श्रद्धा बननी चाहिए। कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से वो असला असली सलाम। जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से। जय गोपाल बोल ले और चाहे दंडवत प्रणाम कर ले, दिल में श्रद्धा नहीं है कोई से लाभ नहीं। दुआ करो दिल पाक से, सच्चे लग श्रद्धा से प्रार्थना करो दंडवत प्रणाम करते समय, आधीनी भाव से वो असला असली सलाम, वो तेरी सही प्रणाम काउंट होगी। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। अब ये ज्ञान यज्ञ आपको सत्संग के माध्यम से सुनाया जाता है। आपको सत्संग में पहले भी बताया, ये धार्मिक यज्ञ जो है ये केवल ग्लूकोज का काम करेंगे, और रोग काटने की का दवाई जो है कैप्सूल और टेबलेट्स या अन्य ट्रीटमेंट सर्जरी, वो उस ग्लूकोज से अलग है। अब ग्लूकोज क्यों आवश्यक है? अब जैसे डॉक्टर के पास जो ही मरीज जाता है, अब वर्तमान में शक्ति किसे में रही कोई ना, क्योंकि आहार ऐसा हो गया, एक दिन बुखार चढ़ जाए 3 दिन गोड्डे टूटे रहे, उठा जाना बैठा जा, आहार वो नहीं रहा जो पहले शक्तिशाली आहार था। अब दूध बेच दे सारा आहार की तरह, सूखी रोटी खावे कर, फिर डलडा वो कौन सा घी, वनस्पति घी प्रयोग करने लगे, तो एक बुखार में गोड्डे टूट जाए, फिर वो 4 बोतल ग्लूकोज की चढ़े। अब जाते डॉक्टर देखता है कि पहले ग्लूकोज लगा देता है। ग्लूकोज से क्या होता है कि शरीर खराब नहीं होता, लेकिन रोग नहीं कटता, शरीर को ताकत मिल जाती है। ताकत की जो है शरीर को ग्लूकोज चढ़ाने से अन्य लाभ होता है शरीर को, लेकिन वो रोग नहीं कटता। जिस रोग से वो वीकनेस आई है, उस रोग के काटने की और टेबलेट्स मेडिसिन यानी औषधि होती है। ऐसे ही ये जो ग्लूकोज आपके दान के लिए प्रेरित किया जाता है, आप योगों योगों से वीक हो लिए, कति कमजोर हो गए, इतने पुण्य अक्षीण हो गए आपके कि आपको आत्य ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। और फिर ये पहला मंत्र, फिर सत्यनाम, ये तीनों मंत्र ये हैं वो रोग जन्म मरण का रोग काटने के ये कैप्सूल हैं, ये अलग से दिए जाते हैं। अब जैसे पुण्यात्माओं पहले, जैसे ये मुसलमान धर्म के अंदर 5 बार नमाज करते हैं, ये बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का पाठ या वेदों का कोई मंत्र जाप करते हैं, ये गायत्री मंत्र बनाकर ओम नाम ला दिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 का है, और उस बार बार उस मंत्र के बार बार रिपीट करने से एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं। गायत्री मंत्र ओम नहीं चाहिए उसके साथ लगाना, भूल के भी नहीं लगाना चाहिए, ये अज्ञानियों की बनाई हुई थ्योरी है। जब परमात्मा ने एक मंत्र बोल दिया अपने मुख से उसके साथ और हम जुड़े हैं तो अपनी नाला की सिद्ध कर रहे हैं, उतना ही बोलना चाहिए जितना भगवान ने उसमें लिख रखा है। जैसे किसी कंपनी ने एक पिस्टन बना के दे रखा है किसी मोटर गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, और उसके साथ कोई अपनी समझदारी उसका नट वेल्ड कर देता है और देखो अब कितना सुंदर बन गया, उसने बिगाड़ दिया वो किससे काम का ना छोड़ा। वो मंत्र बुरा नहीं, लेकिन इस परमात्मा के उस मंत्र के साथ लगाना, परमात्मा की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना है। तो उस भूर्भुव स्व तत्सवितुर यहां से शुरू होता है। इस मंत्र ना आप 100 बार लाख बार रिपीट कर दो, क्या लाभ होगा? केवल ज्ञान यज्ञ का। इस मंत्र नहीं, वेद का कोई भी मंत्र, 5-4 मंत्र कट्ठे भी आप डेली बोल सकते हो, वो केवल ज्ञान यज्ञ होती है। जैसे गीता जी का 1 अध्याय डेली पाठ करने का संकल्प कर लेते हैं कई, तो वो भी एक ज्ञान यज्ञ है। और यज्ञ का फल केवल ग्लूकोस है, मोक्ष नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ वाणियां चुन करके एक जपजी साहिब बना रखे, उसका जाप करते हैं तो वो ग्लूकोस का काम करती है, मोक्ष का नहीं। वो रोग काटन की बीमारी नहीं है, वो तो सतनाम है। वो अलग से कोई मंत्र है जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र है जो गुप्त है, ये दास बताएगा। उन दोनों से मिलकर सत्यनाम बनता है, फिर सारनाम दिया जाता है। सार शब्द की प्राप्ति करके ये पूर्ण दीर्घ रोग काट दिया जाता है। तो इस प्रकार हम जो साधना करते थे वो साधना हमारी इनकम्प्लीट थी। जब तक हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ये रोग नहीं कट सकता। कौन सा? जन्म मृत्यु का रोग। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा, यहां से राष्ट्रपति बन लो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बन लो, फिर मृत्यु होगी, फिर पशु बना पाओगा कि तक कर्माधार से फिर अन्य योनियों चला जाता है, पुनक्षीण हो जाते हैं। तो इस दीर्घ रोग को कटा के हम सतलोक चलेंगे। अब कई ये कहते हैं कि यह पृथ्वी खाली हो जाएगी तो सारे वहां चले गए, कमाल की बात। कोई नो कहे जेल खाली हो जाएगी तो सारे कैदी छूट गए, तो कोई बात नहीं, आग लगो उस जेल का जो पंडा छूट जाता है। तो ये तो एक कैद है, कारागार है ये तो हमारी, हमारे को दुखी किया जा रहा है। यहां हमारा घर तो वहां पर सतलोक में है, तो वैसे खाली पड़े जो नेरे ब्रह्मंड की कितने पत्थर गुमन लाग रहे ऊपर खाली है, ग्रह पर है, अभी एक अंडे जाएगी खाली पृथ्वी धक्के खाती। तो हम अपने लोग चले, हमने इस पृथ्वी का के ठेका ले रखे है। हाँ, यहां हम शुभ काम करें तो पृथ्वी भी खुश रहे, अच्छे काम करें, और हम इतने कुकर्म उतार दें इसके ऊपर वजन बढ़ जाता है। प्रत्येक ग्रह की एक देवी अधिष्ठात्री होती है। ये 33 करोड़ देवता ने एक काल ने दंडा ला रखे हैं, प्रत्येक का। जैसे सूर्य का सूर्य देवता है, ये सूर्य नहीं एक और देव है, ऐसे चंद्रमा एक और देवता है, उसको चांद के जितने भी चंद्रमा है किसी ब्रह्मंड उनका कंट्रोलर बना दिया, वो राज्य कर रखे हैं। जैसे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री, अपने साथियान प्रसन्नकरण की खातर किसी ने चेयरमैन बना दिया है, किसी ने कुछ बना दिया है, उन्होंने धंधा लाए रखे। तो ऐसे इस काल ने सारे बड़ो रखे हैं। तो हमने अपने सतलोक चलना है, यहां का ठेका नहीं लेना। यहां क्या होगा, सारे चले जाएंगे, देखा खाली पड़ी रहेगी, घूमे जाएगी, अपन क्या करना इसका। तो पुण्यात्माओं, आप ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसे विचारों में उलझकर और काल के जाल में रह जाते हैं। अब ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ज्ञान यज्ञ में बताया जाता है कि देते को हर देत है, जहां तहां से आने ना दिया वो मांगते, फिरो फिर परमात्मा सुने ना कान। अब कहते करे करावे साईया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अप आरती अप साजे अप किंगर अप बजे। अब जैसे आपने सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ गया और द्रौपदी के बाद और किसी का ना बढ़ा, और सुना किसी ने तुमने भी भक्ति की होगी कदे बढ़ा किसी का नहीं। और इस दास की जब इस मालिक का सही भक्ति मिली, इस दास की एक लोहे की जाली बढ़ गई। अपुण्यात्माओं, ये सत्कर मानना, जब हमें परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा तो वो गुण है ईश्वर में जो हम सुना करते थे। अब बिजली के गुण हम सुनते हैं, कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूब जगती है और आटा पीस देती है और जमीन से पानी ट्यूबवेल चला देती है। ये गुण हैं बिजली में, ये गुण हैं। लेकिन ये प्राप्त कैसे होते हैं, उसकी विधि न्यारी है। अब जैसे प्रसंग था कि एक गायत्री मंत्र बना रखे उन्होंने, ओम गेल लाक है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 के साथ ओम मंत्र जोड़ लिया, वो नहीं जोड़ना चाहिए। फिर भी ओम भूर भव सव तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, यहां भी घोटिया करते इतने याद आयो। लेकिन ये वेद का मंत्र है और इसमें गुण है कि वो परमात्मा स्वयं भू है, भूर भव सव, और वो पूर्ण परमात्मा सबका रचने वाला सविता है। वो हमारी बुद्धि को परमात्मा की तरफ अपने ही चरणों में लगाए रखे, भक्ति योग्य बनाए रखे, ये गुण है। ये इसका अर्थ है, इसको बार बार 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, 1000 बार पढ़ ले, ज्ञान यज्ञ मिलेगा लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। अब जैसे हम बिजली के गुणों को 1000 बार पढ़ लें, बिजली पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, आटा पीस देती है, ऐसे करती है, तो वो तो गुण है ही, चाहे 100 बार कह लें, चाहे 10 बार पढ़ लें इसको, इससे ज्ञान होता है कि बिजली में के गुण है और वो बिजली का लाभ कैसे मिलता है। वो प्रोसीजर अलग है, बिजली वाले के ऑफिस में जाओ, वहां उनकी टर्म एंड कंडीशन पूरी करो, फार्म भरो, जो भी वो एविडेंस मांगते वो दो, पैसे जो मांगे वो जमा कराओ और फिर कनेक्शन ले लो, फिर वो लाभ देखियो, बिजली आपको लाभ देगी। ऐसे ही प्रभु के गुणों में लिखा है, आप उन गुणों को गाते रहो और वो गुणों को प्राप्ति की विधि अपनाओगे नहीं तो आपको वो लाभ परमात्मा के नहीं मिल सकते। अब कुछ नकली संतों ने, ऋषि महर्षियों ने, झूठे शास्त्र विधि त्याग का मनमानी क्रियाएं आपको दे दी, वो ऐसी दे दी, फिटिंग कर दी और तार जोड़ दिया कनेक्शन, लेकिन उसने जिस से आपका तार जोड़ा है, जिस पावर हाउस थे उसमें लाइट नहीं है, वो किताब बबूल के लठ के बांध रखा तार उसने, और ऊपर से बहुत बढ़िया पावर हाउस दिखा रखा है और किकर के लठ के तार बांध के आपको कनेक्शन दिए बैठे हैं। आप रोज वो गुण भी गाते हो, भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता, किसी का होता नहीं, किसी के नहीं हो रहा था। अब देखना, आप कनेक्शन लेकर जाओगे, बिजली आपके घर पाओगी, आप कनेक्शन, यहां से कनेक्शन मिलता है, आपके जाने से पहले आपके घर लाइट पहुंच जाती है। इसी प्रकार आप यहां नाम लेकर जाओगे, आपके घर पर भगवान पहुंच जाएंगे और वहां बैठे थारे भूतान और पितरा ने दे लठा उड़ा घर तक काट देंगे पहले थे। यानी जो तुम्हें दुखदायी तत्व है वहां शैतान बैठे, उनको भगाओगे वहां से जाते ही, और फिर आपको वो हानि से बचाएंगे, आपको वो लाभ देंगे जो भगवान दिया करता है। अब द्रौपदी का जो चीर बढ़ा वो कैसे बढ़ा, द्रोप सुता कुंदी ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। ये द्रौपदी राजा द्रुपद की लड़की थी और जब ये कुंवारी थी अपने पिता के घर पे ही थी, ये स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती, गंगा दरिया पे। वहां इनके पिता ने अपनी बेटी और रानियों के नहाने के लिए एक सुंदर घाट बना रखा था और द्रौपदी की काफी सहेली थी, वो हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन उस गंगा के घाट पर स्नान करने जाया करती थी वक्त से, और परमात्मा को पता है कि मेरी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम जो भी यहां पदवी पाए हैं ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा है और हमारे ऊपर आने वाली आपदाओं से बचाने के लिए वो परमात्मा ना जाने कितने कारण बनाता है। अब द्रौपदी के ऊपर जो आपत्ति आनी थी, प्रभु को पता था कि उसका चीर हरण होगा, उसके प्रारब्ध में लिखा था, तो परमेश्वर ने ऐसी लीला की, स्वयं ही एक ब्लाइंड मैन की भूमिका की प्रभु ने। कहते हैं, सौ सरछिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अंधम आत्मा का रूप धारण करके परमात्मा उस गंगा के जल में स्नान करने लग गए। अब यहां हम केवल एक अंधा महात्मा लेकर चलेंगे, सुपात्र को दान किया हुआ प्रफुल्लित होता है, कुपात्र को नहीं। एक अंधा महात्मा था, वो दरिया के किनारे चलता चलता उसने सोची दरिया चल रही है, यहां स्नान कर लूं। उसके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, एक कोपीन होती थी जैसे केवल एक पर्दे के ऊपर के एक 6 इंच 8 इंच का एक कपड़ा, एक तागड़ी यानी ऐसे एक रस्सी बांध लेते हैं तागड़ी सी, एक धागा सा जहां नाड़ा बांधते हैं ऐसे, और उसके केवल एक 6 उंगल का यानी इतनी चौड़ाई का एक कपड़ा बांध लेते हैं अपनी लंगोटी के स्थान पर, और दूसरी लंगोटी थी नहीं। वो स्नान करने लग गए दरिया में, स्नान करते करते उनकी वह लंगोटी टूट गई, खुल गिर वो बहकर चली गई। अब वो महात्मा जी उधर देखा कि लड़कियां आ रही हैं शोर शराबा करती हुई। अब संत ने सोचा कि वे लड़कियां आ गई यहां, मेरे ख्याल में कि तो आसपास घाट होगा नहाने का। अब वो संत जब पहले थोड़े पानी में था तो गहरे पानी चला गया गर्दन से थोड़ा सा नीचे तक, इस शर्म के मारे के कहीं लड़में नंगा हूं निवस्त्र हो गया हूं और लड़कियां आऊंगी तो मुझे शर्म लगेगी क्या कहेंगी। अब क्या देखा कि वो लड़कियां आई जो घाट वहां से लगभग 100 फुट की दूरी पर था, वो स्नान करने की तैयारी करने लगी। द्रौपदी की नजर उस संत के ऊपर पड़गी। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब संत परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता जो संत होता है। अब जो पुण्यात्मा होती है साधु भक्त को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और सोचता है कि मैं इनसे बात करूंगा, भगवान की इसे चर्चा करूंगा। अब द्रौपदी के मन में आई कि साधु है स्नान कर रहा है और हम भी नहा लेती हैं जल्दी सी, फिर महात्मा के साथ परमात्मा की चर्चा करेंगे, इनसे प्रभु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब द्रौपदी स्नान करने लगी, स्नान सुनून करके जब वह बाहर आई खूब नहाई धोई नदी में खूब उछल कूद करी और भूल भाल गई। वह फिर आध घंटे में जब नहा धोकर बाहर निकली तब उसको फिर साधु दिखाई दिया। वो हो महाराज जी तो अभी नहा ही रहा है बाहर आया नहीं है। फिर उसने ध्यान से देखा कि महात्मा नहा नहीं रहा है, ये तो कोई वस्तु ढूंढ रहा है जैसे हाथ मार रहा है। फिर उसने देखा कि महात्मा जी तो नी वस्त्र है और बाहर कोई वस्त्र है नहीं, ये शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहा, इसके पास कोई कपड़ा को नहीं। तो द्रौपदी ने क्या किया, अब देखो पुण्यात्माओं इसको कहते हैं ज्ञान, और कहते हैं बैराग नाम है त्याग का 525 माह। अब कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांचों हैं इन्हीं में इनकी दिशा बदल ले। हम लोभ करें तो ऐसा करें, कैसे करें। अब द्रौपदी ने देखा महात्मा निवस्त्र है और उसको ज्ञान इतना तो पता ही था कि मैं धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा, नहीं तो वो अपनी सहेलियों को भी कह सकती, नौकरानियों को भी कह सकती थी कि इसको एक साड़ी का टुकड़ा दे दो महात्मा को, और बांधी तो एक राजा की लड़की के कहने से नौकरानियां तो पूरी साड़ी की साड़ी घेर दे जाते दो देवगी। लेकिन नहीं, यहां ज्ञान में लोभ करना ऐसे सिखाया प्रभु ने ज्ञान ने कि द्रौपदी के मन में था कि मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, ये करेंगी इनको मिलेगा, इनको चांस क्यों दूं, बेईमान ना करे लोभ करे तो ऐसा करे। उस लड़की ने राजा की लड़की देखो कितना सुंदर साड़ी पहन रही होगी, कितनी कीमती होगी, जैसे हम अपने बेटे बेटी को स्कूल भेजते हैं या कपड़े लाते हैं, हम चाहे मैले कुचले किसी पहन रहे हैं फटे पुराने पर अपने बच्चों को बहुत अच्छा वस्त्र लाकर देते हैं अच्छे कीमती जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो ऐसे राजा की लड़की की कितनी सुंदर साड़ी होगी, कितनी कीमती होगी। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में तो एक बिलात एक गट यानी 8-9 इंच का कपड़ा नो पड़ा एक लीर सी और दरिया में डाल दी कि महाराज जी का हाथ लग जाए, क्योंकि वो जिधर जल जा रहा था बहता हुआ उस साइड में 100 फुट नीचे था, नहा रहा था जल में। अब वो महात्मा को दिखाई नहीं दे रहा था, अंधे थे वो जो है वो साड़ी का टुकड़ा दूर से निकल गया। लड़की ने एक और पाड़ा फिर वह आदि 7-8, अब देखो 2 गट में कितना कपड़ा चला जाता है, ऐसे 4 फिर 8 यानी आधे से ज्यादा साड़ी फाड़ फाड़ कर डाल दी, लेकिन महात्मा का हाथ लगी नहीं। अब लड़की ने सोचा भाई कोई बात नहीं, वो निकट न्यो नहीं जाना चाहती कि महात्मा शर्मा जावे लड़की की आवाज सुनकर। फिर उन्हें और वो शर्मांती भी नहीं जावा थी महाराज नहीं वस्त्र। फिर उन्होंने सोचा मेरे पिता के समान है राज, ये महादुखी है, यदि अब इसको कपड़ा नहीं मिलेगा तो सारा दिन इसमें सड़ेगा और कितर रात ने निकलेगा और फिर इसके पास कपड़ा नहीं, महात्मा शर्मदार है पता नहीं क्या सोच बैठेगा। इस उद्देश्य से लड़की ने एक लंबी लकड़ी उठाई, लंबी लकड़ी, और उस लकड़ी का एक लपेटा देकर उस एक और एक ऐसे चीर फिर फाड़ा अपनी साड़ी को और उसमें लपेट के और लंबी लकड़ी करके जहां महाराज जी ऐसे हाथ कर रहे थे, वो साधु जी ऐसे ढूंढ रहे थे, उसके आसपास वो कपड़ा कर दिया, उसके हाथ लग गया। अब साधु के हाथ लग गया तो हाथ पकड़ दिया उसने और फिर देखा अब अंधे के हाथ आंखों का काम कराया करे। उसने सारा देखा कि ये कोई फटा पुराना या कोई वैसे बहता हुआ कपड़ा नहीं आया है, किसी बेटी की साड़ी का टुकड़ा है, उसने जानबूझ कर मेरे लिए हेल्प की है। अब उस महात्मा ने वो साड़ी का कपड़ा वो कपड़ा अपने लंगोटी बांधी और आशीर्वाद दिया, बेटी आज तने मेरा पर्दा रखा है, इज्जत रखिए भगवान तेरा पर्दा रखे, तेरी इज्जत रखे, तने गणाए दे। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह जो चावे सो कर दे, साध वचन पलटे नीचे पलट जाओ ब्रह्मंड। अब जब तो बात आई गई हुई इतना द्रौपदी का जच्ची महात्मा की कह है या साची भी हो जाएगी, भक्त न भगवान गणाए दे। अब वो आत्मा से दी थी, संत परमात्मा ही थे, वो खुद आए हुए थे अपनी बेटी को, पता था कि काल तो मेरी आत्माओं को सताने से लगा हुआ है। अपनी आत्माओं कुछ दिनों के बाद आपकी आंखें यानी मोतियाबंद कति हट जाएगा तो काल ना हमारा कर रखा था ज्ञान का। अब जैसे ये दास पहले हनुमान पूजा करता, श्री राम कृष्ण की पूजा करता था, विष्णु और शंकर जी ने इष्ट मानता था और घर में जो भी सुख होता था जैसे पास हो जाया करते कक्षा में, तो जय हो बजरंग बली की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो भगवान शंकर की हम पास कर दिए। फिर लड़का हुआ, लड़के की खुशी मनाई, भाई हमारे हनुमान जी ने हमारे भगवान कृष्ण जी ने शंकर भगवान ने लड़का दे दिया, तो हम इनको क्रेडिट दिया करते, ये सुख दे रहे हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में कई बार इतने सेफ बचे बाल बाल, और शुक्र मनाया करते भगवान विष्णु ने, भगवान शिव जी ने, राम ने, कृष्ण ने, सारे ने गुण गा दिया करते, इन बचाए दिया हनुमान जी ने, श्याम जी ने। अब बचाया करता यू कबीर भगवान हमें पूर्व संस्कार से। पुण्यात्माओं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2-3 भगवान बताए, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान के, शरीर भी नाशवान के, प्राणी भी नाशवान इनके लोगों के। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष सबसे श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, और वह ये लोक तरम आविश से विभरती अवय ईश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही सबका किए हुए कर्म का वही फल देता है, सबका धारण पोषण वही देता है, अन्य कोई दे ही नहीं सकता, अंडरस्टूड हो गए तो वो सभी सुख ये भगवान ही हमें देता है, चाहे हम वर्तमान में किससे की पूजा कर रहे हैं वो अलग बात है, वो पूजा है ही नहीं हमारी क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन जो आपको बाल बाल बचाता है ऐसे सुख देता था, तो तो हाँ वो देता तो कबीर भगवान था और हम क्रेडिट देते थे इनको। परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। हम इधर एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, फलाने ने मेरा ये लाभ कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, वहां उसने बचा दिया, ऐसा होगा। कहते आपने उस धनी का तो किधर जिक्र भी को नहीं, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। उसका पूर्ण परमात्मा जो हमें सुख दे रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को भी वही सुचारू रूप से देता है, बचाव करता है, उसका कितना नाम भी नहीं था, लेखा भी नहीं था। तो द्रौपदी अपने घर आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसका ब्याह हो गया। फिर एक समय संस्कारवश कौरव पांडव ने जुआ खेला, द्रौपदी सारा राज जिता दिया युधिष्ठिर ने, और अपनी पत्नी भी दाव पर लगा दी। अब इन कथाओं को, महाभारत जैसे कथाओं को हम सहर सुना और पढ़ा करते, एक पढ़ने की कथा है कि ये महापुरुष थे जिसने अपनी पत्नी दाव पर लगा दी, उनकी अकल मारी गई। बताओ उनको के था महात्मा कम, और के उनको सूरवीर बताओ, इतनी मंदबुद्धि के लोग, के जरूरत थी जुआ खेलने की। और फिर पत्नी दाव पर लगा दी, फिर भी ना डटा गया। ऐसी बेहुदी कथाओं को सुनकर हम सारा अपना जीवन बर्बाद किया करते हैं, सोचा करते हैं कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये कोई धार्मिक ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ ये है कबीर परमात्मा की वाणी, आनंद अंदर से आत्मा गदगद हो जाती है, ये कहानियां परमेश्वर के। तो क्या हुआ कि द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। एक बार युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और द्रौपदी पानी लेकर आई थी जल भर के, और दुर्योधन का आना हो गया घर में, उसने शीशा ना दिखा, टक्कर लगी उसकी और एकदम वो पीछे गिर गया। अब जैसे मजाक कर लेती हैं, अब द्रौपदी का वो देवर लगा था, छोटा भाई था युधिष्ठिर से, तो उसने हंसी मजाक में कह दिया अंधों का अंधे होया करें। ये आम पहले मतलब मजाक आम आदमी कर लिया करते थे ऐसे, लेकिन दुशासन दुष्ट आत्मा था, उस बात का घना दुख मान गया और मन मन में सोच लिया कि तुझे मजा दिखाऊंगा चखाऊंगा, अंधा का अंधे हैं या आंखों वाले हैं। उस प्रतिशोध के कारण जब द्रौपदी को जुए पर जीत लिया युधिष्ठिर से दुर्योधन ने, अपने भाई दुशासन से कहा कि जा उस द्रौपदी को ला पकड़ कर, उसके बाल पकड़कर घसीट कर ला। उससे पहले नौकरानी भागी गई कि द्रौपदी बात बिगड़ गई, आपको जुए में हरा दिया, आपको जुए में जीत लिया दुर्योधन ने, और उसने कहा है कि द्रौपदी को लाओ और सभा में नंगी करूंगा। अब द्रौपदी कहती है कि हे बावड़ी क्या बात कर रही है तू, सभा में कौन कौन है वहां पर? के पांचों पांडव बैठे हैं और भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि भी विद्यमान है, चाचा विदुर भी है। फिर द्रौपदी बोली ऐसी सभा में ऐसा जुल्म होया करे, तेरा दिमाग खराब है, नंगी क्यों करेंगे मेरे को, अगर देख लिए उनकी नींद खराब है। अब इतनी बात हो रही थी तेरे दुशासन पहुंच गया कि आजा अब तुझे मजा चखाएंगे, हम अंधे हैं आंखों वाले तुझे दिखाएंगे। अब द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीट के लेकर चल पड़ा। अब पहले द्रौपदी ने यह सोचा था कि मेरे पांचों पांडव बैठे बकल तार देंगे जब मेरा हाथ ला दिया था, और फिर दूसरा देखा था वहां भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे, कर्ण जैसे योद्धा और द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे और चाचा विदुर जैसे सहनशील व्यक्ति बैठे, वहां ऐसी गड़बड़ हो सकती है? ये नहीं होने देंगे। अब जब वहां जाकर देखा उसने द्रौपदी ने, और दुशासन ने कहा कि हम तो अंधे हैं भाई, हम अंधे हैं, द्रौपदी ने कहा था अंधा का अंधे होया करें जन्म लेते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिताजी वो जन्म जात अंधे थे। तो कहने लगा हम तो अंधे हैं भाई, द्रौपदी ने नंगी करांगे भी यहां सभा में, हमने दिखा थोड़ा ही है, इसकी के बेइज्जती होगी। अब द्रौपदी ने सोचा तो बात बिगड़गी सचमुच, ये तो काम बिगाड़ेंगे। फिर उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ, उन्हें नीचे गर्दन कर ली क्योंकि हार चुके थे। फिर उसने देखा भीष्म द्रोणा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उन्होंने भी नीचे गर्दन कर ली, कोई सहारा देने को तैयार नहीं। विदुर की तरफ देखा जब विदुर खड़ा हुआ, विदुर ने कहा कि भले मुनसो दुर्योधन, कुछ तो कुछ विवेक से काम ले बेटा, तुम किसकी इज्जत किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपनी अपने भाई की पत्नी को सरेआम तो नंगा करने जा रहा है, तो अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है, एक कुल एक परिवारा। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है इन पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा, ने बोला तू तो इनका चमचा है पांडवों का, इन्हीं की ओर बोलता सदा। और विदुर ने कहा था कि ये तुम्हारा भाई है, एक कुल थारा एक परिवार, किसकी बेइज्जती कर रहे हो, नालायक को क्यों गलती करते हो, ऐसा मत करो। विदुर के मुख पर लगा थपेरा तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। ये सब दुशासन ने कहे तू तो बांदी ते पैदा हुआ था, बांदी का ना गुलाम, इसलिए गुलाम वाली बात करे है। तो इस पॉइंट पे भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया, और तेरा गजब भैया ये देख लो मारे पंचायती, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और वो गुरु और कर्ण जैसे योद्धा, उन्हें धमकाना चाहिए था उस नालायक दुशासन को, खबरदार चाचा पात उठा दिया, नीच तने जुलम कर दिया, और उन तीनों में से एक भी खड़ा हो जाता, इतने सूरवीर थे वो, दुशासन के हिम्मत नहीं थी द्रौपदी तर्क उंगली कर दे, लेकिन दुशासन के मलिनन को खाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तीनों की, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की। जब दुशासन ने यह शब्द कहा कि तू तो है बांदी का जाया, विषम पिता मह और दरुण वो करुण मुस्काया, करुण आसन लागे दांदरे का डंडा गया, रे थरा गजब हुई हो तुम पंचायती हो। विदुर उठकर चला गया, ये एक सच्चे पंचायती की नीति होनी चाहिए, कहे तो सत्य कहे, नहीं माना तो सभा त्याग देनी चाहिए, अन्याय को देखना नहीं चाहिए। विदुर उठकर चला गया। अपनात्माओं ये इस एक सटोरी में कई बात सुलझेंगी, कई शंका का समाधान बनेगा। एक तो ये बनेगा कि देते को हर देत है जहां तहां से आण, जिसने दान किया उसको भगवान अवश्य देगा, कोई कारण बनावे, और जिनने दान नहीं किया वो मांगते फिर यो साहेब सुने नहीं कान, ये कागज चुगड़िया अंडे हैं वो भिखारी, दिए बाबा कोई नहीं छोड़ता, चल चल। और जिनने दान कर रखा है कार कोठियों में चलते हैं, हेलीकॉप्टरों में चलते हैं, समय पर रोटियां मिली है ठीक मिली है, तो नहीं दिया वो मांगते फिर यो, फिर परमात्मा नहीं सुनता है। अब दूसरा यह है कि एक नीति ऐसी होनी चाहिए पंचायती की, या तो बात कहे सत्य कहे, नहीं तो उठकर चला जाओ, वहां रहना नहीं चाहिए उस अन्याय स्थल पर। और फिर तीसरी ये सिद्ध करी परमात्मा ने कि जब तक हम संसार को अपना सहयोगी मानते हैं परमात्मा दूर रहता है, जब हम संसार से हटकर एक मालिक पर आसरा करते हैं परमात्मा तेरे बिना हमारा कोई नहीं, जब द्रौपदी ने देखा कि तो सब बंधे पड़े हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की आज ये नीति, ये दांतरे निकाल रहे हंस रहे हैं, इन्होंने मेरी इज्जत की चिंता नहीं और यहां बैठे हर यू नंगी करने को तैयार हो गया है, तो उनकी के नीत होगी, आप सोच सकते हैं उनके दिन में कितना दोष बड़ा होगा। नहीं तो किसी लड़की को नंगा कर ना बोला तो उठ कर चला जाना चाहिए, उनको शर्म थी, तय उनके दिल में दोष था। अब तब द्रौपदी उधर पांडवों की तरफ देखा, वो पांच नौकर गए नीचे ने, क्योंकि वो हार चुके, बंधन मर्यादा में बंध गए। अब परमात्मा कहते बंधे से बंधा मिला छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे चार पांच व्यक्ति नो बांध रखे पाछे तात करके किसी वृक्षों के, और एक बंधे हवा दूसरे ने कहता तू मुझे खोल दे, वो कहता मुझे खोल दे, वो नहीं खोल सकते, वो तो निर्बंध आवा जो बंधा ना हो उन सब के बंधन खोलकर चलता करते हैं।